پس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ آمین۔ آئیے چند لمحوں کے لیے سروں کو جھکائیے، چند سیکنڈز کے لیے۔ خداوند آسمانی باپ، تو بولتا ہے اپنے لوگوں اور اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے، میری بھلائی کے لیے، مذبح پر استعمال ہونے والے بچوں کی بھلائی کے لیے، ان سے جن سے تو پیار رکھتا ہے ان کی بھلائی کے لیے بولتا ہے۔ اے باپ، میں تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ مجھے اور خداوند اپنے لوگوں کو فضل دے کہ ہم کتاب مقدس کو سمجھ سکیں۔ میں تیار ہوں تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے، یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ مجھے اس بات کا یقیناً معلوم ہے کہ میرا حساب ہونا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ there is a certain time about to come into your life کہ جب میں اور آپ حساب دینے کے لیے پیش کیے جائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی؟ کیوں؟ کیونکہ کرسچن کہلانا، کرسچن ہونا اور کرسچن زندگی گزارنا الگ الگ حالتیں ہیں۔ اور پالوس رسول یہاں رومنز کو خط لکھتے ہوئے ایک چنوتی کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے مرے مگر گناہ کے اعتبار سے، مرے مگر گناہ کے اعتبار سے۔ یہاں پالوس کہتا ہے کہ پس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں کہ فضل زیادہ ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، اس کا یہ صیغہ جو استعمال کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ تم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہو، اس نے کہا ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں۔ یہاں طریقہ تخاطب ہے، سنیے گا، ویسٹرن ورلڈ میں اور ایسٹرن ورلڈ میں طریقہ تخاطب مختلف ہے۔ ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یو آر ڈیڈ ٹو سین، ایسٹرن ورلڈ یہ کہتی ہے کہ وی آر ڈیڈ ٹو سین، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے۔ وہ لفظ ہم استعمال کیا جاتا ہے مشرقی زبان میں، مگر مغربی زبان میں ہمیشہ مخاطب کیا جاتا ہے مذہبوں سے یا عام دنیا یا سے باتیں کرتے ہوئے، یو یعنی تم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے۔ تو پالوس جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ استعمال کر رہا ہے ہم جو گناہ کے، اور جب ہم یہ صیغہ استعمال کرتے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف پاسٹر کو یا مذبح پر استعمال ہونے والے لوگوں کو یا پالوس رسول کو، بلکہ اس کا مطلب ہے وہ کلیکٹیولی کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو، یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف تم کو۔ اور پالوس کہہ رہا ہے کہ پس ہم کیا کہیں، کیا کہیں، ہم جو مسیح کے لوگ ہیں ہم کیا کہیں، کیا فضل زیادہ ہو جانے کے سبب سے گناہ کرتے رہے؟ اور فضل جو ایک ایسا لائسنس ہے مسیحیوں کے پاس، پوری انٹرنیشنل کرسچن کمیونٹی کے پاس، جو اس گریس کے لائسنس کو اپنی جسمانی خواہشوں کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا کرتے ہیں۔ میں جو چاہوں میں کروں، جو جی میں آئے میں کروں، مگر پالوس کہہ رہا ہے کہ بس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہے کہ فضل زیادہ ہو جائے؟ یعنی فضل جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو ایک لائسنس دے دیا گیا کہ جاؤ اور گناہ کرو، بلکہ لکھا ہے کہ ہرگز نہیں۔ گریس از ناٹ اے لائسنس، اور یہ گریس جو ہے یہ لائسنس در حقیقت آپ کی نجات کا ہے۔ آپ کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ اب آپ گناہ کرتے رہیں، کیونکہ آپ تو بچ چکے ہیں۔ جب بھی کوئی مسیحی خداوند یسوع مسیح کو، جب بھی کوئی آدمی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، تو اسے معلوم ہے کہ وہ کیا ہو گیا ہے، آزاد ہو گیا۔ کس سے؟ گناہوں سے۔ اور اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ موجود ہے۔ کتنے لوگوں نے ہم میں سے بپتسمہ لیا ہوا ہے؟ کتنے لوگوں نے نجات کا دعویٰ کیا ہوا ہے؟ हम में से हर एक हाथ खड़ा कर सकता है, हम में से हर एक कह सकता है कि एक वक्त था मैंने बपतिस्मा लिया था, मैंने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। तौबा करो क्योंकि आसमान, तौबा किससे करें? यहां आप किसी से पूछ के देख लीजिए, हम इकरार करने के लिए भी तैयार नहीं है कि हम गुनाहगार हैं। हम हमारा इकरार भी ऐसा होता है, अगर मैं कोई गुनाह कीता है तो खुदावंद मैनू माफ करें। यानी दिस इज हाउ वी कन्फेस आवर सिंस, कि अगर मैंने कोई गुनाह किया तो खुदावंद मुझे माफ करना। यानी इतने बच्चे तो हम हैं नहीं है कि हमें पता ही ना हो कि हमने क्या किया है ना। अगर मैंने गुनाह किया तो ये कौन सा गुनाह है जो अगर की हालत में आता है? मैं और आप, हम जानते हैं कि मैं और आप इंसानी बदन में हैं और इंसानी बदन में गुनाह होगा। इसलिए आप ये ना कहें कि अगर मैंने गुनाह किया, आप कहें हां खुदावंद मैंने गुनाह किया, मुझे माफ कर। यानी ये कोई मिखाया है कि उसे मालूम नहीं है कि थूकना जो है किसी पर बदतमीजी है, किसी पर हाथ रेस करना बदतमीजी है। मुझे और आपको फहम है कि मैं और आप खताएं करते हैं हर गुजरते दिन के साथ, हमसे मिस्टेक्स होती हैं, हम गलतियां करते हैं, हम खता का पुत्र हैं और होती रहेंगी। मगर मुझे और आपको जब भी खुदावंद की हुजूरी में आना है तो ये अगर मगर का लफ्ज इस्तेमाल करके नहीं, बल्कि पूरे सिदक दिली से कहें, खुदावंद हां मैं जानता हूं कि मैंने किसी को ऑफेंड किया है, मैं जानती हूं कि मैंने किसी का दिल दुखाया, मैं जानता हूं कि मैंने गुनाह किया है। और ऐसे ऐसे गुनाह करके भी अगर हम कहें, बड़े बड़े करके भी कहें कि खुदावंद अगर मैंने कोई गुनाह किया तो मुझे माफ करना है, हरगिज ऐसा नहीं है। फिर आपकी और मेरी मुआफी नहीं है, मुआफी यहां से सिदक दिली से गुनाहों के इकरार के साथ है। और पालुस रसूल ने यहां जब यह कहा कि बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें कि फजल ज्यादा हो, ये सोच के गुनाह ना करें कि फजल ज्यादा हो जाए, बल्कि ये सोच के फजल को इंजॉय करें कि गुनाह पर गालिब आना है। फजल जो है दर हकीकत ग्रेस जिसे हम कहते हैं, ये ग्रेस दर हकीकत एक एनेबलिंग पावर है। एनेबलिंग पावर का क्या मतलब है? वो कुवत जो आपको अहल करती है गलबा पाने के लिए। ग्रेस इज एन एनेबलिंग पावर, ये आपको पावर देती है, ये आपको हौसला देती है, ये आपको एनर्जाइज करती है, ये आपको कुवत देती है कि आप गुनाह पर गालिब आ जाएं। आपने कभी इस बात का एक्सपीरियंस किया है कि कोई गुनाह जब आप करने लगते हैं, कोई गलती आपसे होने लगती है, तो कितनी जंग आपके अंदर होती है? जितनी बड़ी जंग आपके अंदर चलती है ना, उतना बड़ा फजल भी काम कर रहा होता है। मगर फिर कुलीदी रोल कौन अदा करता है? आपकी जान, विल, माइंड, इमोशन, क्या आपने किसकी तरफ जाना है। तो अगर मेरी और आपकी लाइफ में गुनाह से जंग नहीं है, गुनाह से मुठभेड़ नहीं है, और मैं आसानी से गुनाह कर जाता हूं, आसानी से हसद का शिकार, आसानी से झूठ का शिकार, आसानी से हरामकारी का शिकार, आसानी से बुतप्रस्ती का शिकार, आसानी से बुराई का शिकार हो जाता हूं, तो इसका मतलब है मुझे ग्रेस नहीं मिली। आई हैव नो ग्रेस एट ऑल। क्यों? क्योंकि मुझे एक एनेबलिंग पावर ही नहीं मिली हुई। तो पालुस कह रहा है कि मुझे और आपको हरगिज गुनाह नहीं करना। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, किसके एतबार से? आप कह सकते हैं ये गुनाह के एतबार से मरना क्या है? गुनाह, डाइंग टू सिन क्या है? हाउ ए पर्सन कैन डाई टू सिन? कैसे एक आदमी गुनाह के एतबार से मर सकता है? व्हाट डज इट मीन? मैं और आप तो, हम तो चलते फिरते इंसान हैं, हम किस तरह से मर सकते हैं? डाइंग टू सिन का मतलब है कि हम गुनाह करने के एतबार से जो नेचर रखते हैं वो मौत का शिकार है। फिर कह रहा हूं, मैं और आप जो गुनाह की नेचर रखते हैं वो मौत का शिकार है। लफ्ज जो मैं बोल रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा। मैं और आप یہاں اگر میں نے اور آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو توبہ کرتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں, خداوند آسمانی باپ میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا, یہی کہتے ہیں نا, اور تیرے ساتھ چلوں گا, اور پھر آپ بپتسمہ لیں گے. آپ کا اقرار جو ہے وہ آپ کو مارتا ہے اگر تو وہ جینون ریپینٹنس ہے. جینون ریپینٹنس جو ہے وہ آپ کو مارتی ہے. کس کے اعتبار سے؟ گناہ کے اعتبار سے. گناہ کی نیچر جو ہے اسے میں اسی طرح سے بیان ہمیشہ کرتا ہوں کہ میں اور آپ, ہم جانتے ہیں کہ ہم, پالوس نے جو ٹرم استعمال کیا کہ ڈائنگ ٹو سن, ڈیڈ ٹو سن, اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے نہیں ہیں گناہ کرنا کیونکہ آپ کی نیچر جو وہ ڈیڈ ہے. آپ کی نیچر جو ہے ڈائنگ, جو آپ کی سنفل نیچر ہے جو گناہ کرنا چاہتی ہے وہ ڈیڈ ہے. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا پالوس رسول کی طرح وہ کہتے ہیں, آپ کو ملیں گے کہ جو نیکی میں کرنا چاہتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں ہے, مگر جس برائی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے. اب کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ کی وہ شریعت جو مجھ میں بسی ہوئی ہے. گناہ, اگر آپ ارادہ نیکی کا کرتے ہیں اور ہو گناہ جاتا ہے, ہو برائی جاتی ہے, تو اس کا مطلب وہ شریعت جو ہے نا آپ کے اندر اور میرے اندر گناہ کی, وہ کام کر رہی ہے. وہ ٹوٹلی ڈیڈ نہیں ہے بلکہ اسے ہم کہتے ہیں کہ ڈائنگ ٹو سن, مرتے رہنا گناہ کے اعتبار سے. اور پالوس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر رہے ہیں, ہر روز مر رہے ہیں, اور اگر مر رہے ہیں تو پھر گناہ کا غلبہ ہم پر ہونا نہیں چاہیے. میں اور آپ مسیحی ہیں, ہمیں معلوم ہے, میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں اور ہم اس دنیا میں مسیحی زندگی گزار رہے ہیں, مگر کیا میں اور آپ گناہ کے اعتبار سے مرنے کا تجربہ کرتے ہیں؟ یوسف نے گناہ کے اعتبار سے مرنے کا مکمل تجربہ کیا, اور یوسف کی لائف گناہ کے اعتبار سے مرنے کا میسج دیتی ہے. جو گناہ کے اعتبار سے مر رہا ہو نا, وہ بھاگتا ہے گناہ سے, وہ گناہ سے بھاگتا ہے, اور جو گناہ کے اعتبار سے مرا نہیں ہے وہ گناہ کی طرف بھاگتا ہے. اور یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں گناہ سے بھاگتا ہوں یا گناہ کی طرف بھاگتا ہوں. ایک مسیحی جو ہے وہ گناہ سے بھاگتا ہے, اور ایک غیر مسیحی جو ہے وہ گناہ کی طرف بھاگتا ہے. حالانکہ پرانے عہد نامہ میں آپ یوسف کی لائف کو دیکھیے تو وہ گناہ سے بھاگا ہے, گناہ کی طرف نہیں بھاگا. سیمسن گناہ سے نہیں بھاگا, گناہ کی طرف بھاگا ہے, اس نے سزا پائی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں مسیح کا روح تھا, مگر یٹ اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ گناہ سے بھاگے گا نہیں بلکہ گناہ کی طرف جائے گا. میں اور آپ زندگی میں ڈھیروں چیزیں ایسی ہیں جن سے خدا نے منع کیا ہوا ہے, جب آپ ان کی طرف بڑھتے ہیں تو یو آر گیٹنگ اٹریکٹڈ ٹو سن, آپ اٹریکٹ ہو رہے ہیں سن کی طرف, رادر ٹو بی کہہ لیجئے ریپلسیو ٹو سن, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کی طرف دوڑ رہے ہیں. خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے دور جائیں. اب جتنا اس سے دور جاتے جائیں گے آپ گناہ کے اعتبار سے مرتے جائیں گے, ٹھیک؟ اور یہاں پالوس نے کہا کہ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے, مری گئے, تو ایک مسیحی جو ہے, اسے میں عموماً کہتا ہوں کہ اسے کس طرح کا ہونا چاہیے. فزیکلی ہم دنیا میں تو ہیں بٹ دنیا کے ہیں نہیں ہیں, دنیا کے ہیں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب دنیا کے کام نہیں کریں گے تو دنیا کے اعتبار سے, گناہ کے اعتبار سے وی آر ڈیڈ. دنیا جو چاہتی ہے اگر آپ وہی کریں گے تو آپ کیا ہیں, یو ناٹ ڈیڈ ٹو دا ورلڈ, آپ تو دنیا کے لحاظ سے نہ, دنیا آپ کو کئی ایک چیلنجز دیتی ہے, کئی ایک آزمائشیں دیتی ہے جو خدا کے قوانین پر غالب آنے کے لیے کہتی ہیں, مگر خدا کا قانون کہتا ہے کہ آپ دنیا پر غالب آؤ. اور میں اور آپ تو آسانی سے سلپ ہو جائیں گے, مرنے کی بجائے ہم دنیا گناہ کے اعتبار سے زندہ ہیں. اور اگر مسیحی اسی طرح گناہ کے اعتبار سے زندہ رہے گا تو مسیح کے اعتبار سے مر جائے گا, اور جو مسیح کے اعتبار سے مر گیا ہمیشہ کی زندگی سے بھی جاتا رہے گا. ایک مسیحی گناہ کرتا نہیں رہتا, ول ناٹ کنٹینیو سننگ. اور آپ کہیں گے سن کیا ہے, کسی کو ڈیفینیشن کا پتہ ہے کہ گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حکم توڑنا. حکم توڑنا در حقیقت کیا ہے؟ بغاوت ہے، گناہ ہے. اور میں اور آپ کتنے خداوند یسوع مسیح کے خدا کے حکم توڑ رہے ہیں؟ عدن میں کتنے حکم توڑے گئے ہیں؟ ایک حکم توڑا گیا ہے. اور اسی ایک حکم کے توڑنے کے نتیجہ میں کیا ہوا ہے؟ تباہی. عدن سے جو ہے وہ نکالے جانا، خدا کی شکل کو ڈس فگر کر دینا، ہمیشہ کی زندگی سے ہاتھ دھو دینا، اسپرچولی ڈیڈ ہو جانا ایک گناہ کے سبب سے. اور رومنز 6 اس کی 12 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، کتنے آدمیوں کے سبب سے؟ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی. کس کے سبب سے؟ گناہ کے سبب سے موت آئی. اور اس موت کو زندگی میں بدلنے کے لیے یسوع مسیح آیا. جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور اسی طرح موت سب آدمیوں میں پھیل گئی کیونکہ سب نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا. بہت سے لوگ شاید اس اقرار سے ہمیشہ شرماتے ہیں کہ میں اور آپ گناہگار نہیں ہیں. پالوس رسول نے کہا کہ بے شک مسیح یسوع گناہگاروں کے واسطے دنیا میں آیا. کن کے واسطے؟ مسیح یسوع گناہگاروں کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا گناہگار. پالوس نے کیا کہا؟ آئی ایم دا چیف سینر. جو میں بات پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو مجھے معاف کرنا، اگر میں نے آپ کے حق میں کوئی برا کہا تو مجھے معاف کرنا، حالانکہ پتا بھی ہوتا ہے کہ میں نے کیا کہا. مگر یہاں پالوس رسول کا اعتراف دیکھیے کس قدر کلیئر ہے. پالوس کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں جس کے لیے یسوع مسیح دنیا میں آیا ہے. اور کوئی اعتبار، کوئی اقرار کرنا نہیں جاتا کہ میں گناہگار ہوں. جب آپ اقرار نہیں کریں گے تو آپ معاف کیسے کیے جائیں گے؟ جب آپ اقرار نہیں کریں گے تو آپ چھڑائے کیسے جائیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کوئی کام آپ غلط کر رہے ہیں، یو کین ناٹ بی ڈیلیورڈ فرام اٹ. ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں، یعنی گناہ میں آئندہ کو زندگی گزارے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں مسیحی ہو گیا تو کیا میں بالکل گناہ نہیں کروں گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. گناہ کی ٹیمپٹیشنز ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ رہیں گی. انٹل وی گیٹ گلوریفائڈ، جب تک کہ ہم جلالی بدن نہیں پاتے، ہمیشہ آزمائش رہیں گی. مگر خدا نے جو فضل دیا ہوا ہے، خدا نے جو پاکرو دیا ہوا ہے، وہ اس گناہ پر غالب آنے کے لیے دیا ہوا ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ اس گناہ کا مقابلہ کریں گے. ایک بار آپ کو ضرب لگی ہے مگر دوسری بار نہیں لگے گی، دوسری بار لگی ہے تیسری بار نہیں لگے گی. آپ فیس کریں گے، آپ اس پر غالب آئیں گے اور فتح پائیں گے. پترس نے خدا یسوع مسیح کا انکار کیا، اس نے گناہ کیا. کتنی بار؟ تین بار اس نے گناہ کیا. مگر ایسا بھی وقت آیا کہ جب پاک روح اسے ملا، جب فضل اسے میسر آیا، تو یہی پترس ہزاروں کی تعداد کے سامنے کھڑا ہو کر کیا کر رہا ہے؟ عید پینتیکوست کے دن یسوع مسیح کا اقرار کر رہا ہے. وہی پترس ہے جس نے تین بار انکار کیا سپاہی کے سامنے، چھوٹی بچی، یعنی یہ وہ پترس ہے. بٹ وہ اس گناہ کی حالت سے باہر آیا ہے. کب؟ جب روح القدس ملا ہے، جب اسے جو ہے وہ فضل ملا ہے، تو پھر وہی ہزاروں کے سامنے کھڑا ہو کے اقرار کر رہا ہے، وہی ہزاروں کے سامنے آ کر کہہ رہا ہے. ہیکل کے دروازہ پر لنگڑا بیٹھا ہوا ہے، اس نے مانگا اور پترس نے اسے کیا کیا؟ سونا اور چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، مگر جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم تمہیں دیے دیتے ہیں، اٹھ خداوند یسوع مسیح کے نام سے. یہ وہ ہے جسے یہ منع کر رہے ہیں کہ تُو نے یہ نام نہیں لینا، مگر اس کا اقرار جو ہے اب نیکی راست بازی گنا جا رہا ہے، پاکیزگی گنا جا رہا ہے. میں اور آپ بعض اوقات ایک دو تین بار جب گناہ کسی میں مسلسل رہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ خدا کا فضل میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے، جو مجھے اور آپ کو کہتا نہیں ہے کہ بھیا یہ غلط ہے. کوئی آپ کو چھڑانے والا نہیں ہے. فضل آپ کو گناہ سے نکالتا ہے، اور اگر فضل آپ کے ساتھ نہیں ہے تو یو ول ریمین ان یور سینس، یو ول کنٹینیو سننگ، یو ول انجوائے ان فیکٹ بائی ڈوئنگ اٹ. آپ گناہ کریں گے، انجوائے کریں گے. اور جس طرح سے میں نے شاید غالباً پہلے بھی بتایا کہ ہمارے نزدیک گناہ جو ہے وہ بعض اوقات گناہ رہتا ہی نہیں ہے، क्यों? क्योंकि हम उन्हें सिचुएशनल डिसीजंस कह के निकल जाते हैं कि ये वक्ती फैसले हैं, हमें करने पड़ते हैं। कितने तो चलो झूठ भी बोलना ही पैंदा है ना, वो हमें कितने तो झूठ बोलना जड़ा है ना, वो हमारी नेचर डेवलप करता है झूठों के लिए। छोटे छोटे झूठ जो है वो बड़े बड़े झूठों के लिए तैयार कर रहे होते हैं, छोटी छोटी खराबियां बड़ी बड़ी खराबियों के लिए तैयार कर रही होती हैं। मुझे और आपको उनका मुकाबला करना चाहिए। और लिखा कि अगर हम गुनाह के एतबार से मर रहे हैं, वी नॉट सपोज टू लिव इन इट, हम उसमें जिंदगी ना गुजारें, हम उसमें जिंदगी ना गुजारें। और बहुत से लोग मुसलसल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, मुसलसल जिंदगी गुजार रहे होते हैं किसमें? गुनाह में। आइंदा को जिंदगी ना गुजारें। और ये रोमन्स को नहीं लिख रहा, बस मुझे और आपको भी कह रहा है कि मुझे और आपको भी जिंदगी गुनाह में नहीं गुजारनी। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि गुनाह में रहना मसीह के कफारे का इनकार है। हम इनकार कर रहे हैं कि तेरा कफारा जो है वो हमें बचा नहीं सकता। आप वर्क प्लेस पे हैं, आप घर के अंदर हैं, आप चर्च के अंदर हैं, आप कहीं भी हैं, हमेशा सोचिए और जानिए कि मुझे गुनाह का मुकाबला करना है, मुझे गुनाह का मुकाबला करना है। और जो मुकाबला नहीं करते वो गिराए जाते हैं, वो हलाक किए जाते हैं, वो मारे जाते हैं, उन्हें जरबे लगेंगी, उन्हें चोटें लगेंगी, वो सताए भी जाएंगे और फिर अल्टीमेटली मरेंगे भी, अल्टीमेटली मरेंगे भी। अगर मैं मरा हुआ हूं गुनाह के एतबार से, तो कोई चीज मुझे जगा सकती है आसानी से? नहीं। आप किसी मुर्दे से बात करें कि तुम मुर्दा जो है वो बोलेगा आगे से? नहीं, नहीं बोलेगा। किसी मुर्दे से बात करें आशिक भाई, बोलेगा आगे से? नहीं बोलेगा। तो आपको क्या कहा जाएगा? जो बोलेगा, मुर्दे से बात करेगा। और आपने कई एक फ्यूनरल्स अटेंड की हैं, खवातीन रोती हुई कहती है बच्चे मेरे बोल मेरे नाल, तो वो बोल नहीं रहा होता। बेटा बोल, अब्बू जी बात करें, मामू बात करो, बट दे डोंट टॉक। क्यों? दे आर डेड। इसी तरह अगर मैं और आप गुनाह के एतबार से मर गए हैं ना, गुनाह आवाजा मारता रहेगा मगर आप जवाब नहीं देंगे, आप जवाब नहीं देंगे। क्यों? अब गुनाह जिस तरह से मैं एक मुर्दा आदमी ना बोली जावा तो somebody will call me crazy. Why? Because I'm not getting any response. मुझे कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। इसी तरह आप गुनाह को भी क्रेजी कर दें जब गुनाह को जवाब ना मिले। गुनाह बोलता जाए भैया, बोलता जाए, कहता जाए कि मैनू कर, मुझे कर, मुझे कर, मुझे कर, मुझे कर, आगे से जवाब ना मिले। क्योंकि मैं तो वही गुनाह के एतबार से मर गया हूं, I'm dead to sin. तो फिर क्या होगा? गुनाह जो है वो शर्मिंदा होगा और फिर आपसे बात करना बंद कर देगा। वो बात उससे करता है जो उससे जवाब देता है, वो मौके उससे लेता है जो उसे जवाब देते हैं। और जिस तरह से किताबे मुकद्दस में लिखा, दिन दिन से बात करता, रात रात से कलाम करती है, रात रात से कलाम करती है, दिन दिन से बात करता है, नूर नूर से बात करता है, खुदा खुदा के लोगों से बात कर रहा है, खुदा अपने बच्चों से बात करता है, रास्त रास्त की महफिल में रहना पसंद करता है, नापाक नापाक की महफिल में रहना पसंद करेगा। जैसे कहते हैं कौवा जो है वो कौवों में उड़ेगा, हंस जो है वो हंस में उड़ेगा, और इसी तरह शेर शेरों के दरमियान में रहता है, तो रास्त रास्त बाजों के दरमियान में रहेगा। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो दुनिया से कट गया, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो नारास्त के दौरान या गुनाहगारों के दरमियान में नहीं जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। खुदा ने हमें रखा है, मगर वो इंजॉय किसे करता है? अपनी महफिल को, रास्त रास्त बाजों की महफिल को, नारास्त नारास्त की महफिल को इंजॉय करेगा। और यीशु मसीह ने अपनी हाई प्रीस्टली प्रेयर में, हम बाइबल स्टडी में 17वां बाब शुरू करेंगे, और वन ऑफ द अमेजिंग चैप्टर्स इन द बुक ऑफ जॉन, 17वां चैप्टर जो है जिसमें यीशु मसीह ने काहिनाना प्रेयर की है, उसमें यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया में हो, दुनिया के नहीं हो। यानी उसने हमें, he could have taken us out of the world, but he did not. He wanted us to remain in the world so we can influence the world, we can impact the world. हम impact करें। अगर मैं जिंदा हूं गुनाह के तबार से, तो गुनाह की आवाज मेरे कानों में आएगी और मीठी लगेगी, अच्छी लगेगी, और मैं गुनाह करूंगा। और अगर मैं मर चुका हूं, तो फिर गुनाह बोलता जाएगा, बोलता जाएगा। आपको कई आजमाइशें आएंगी और आप आसानी से कह देंगे, क्या कहेंगे? शैतान दूर हो। यीशु मसीह ने 40 डेज की फास्टिंग के दौरान जस्मानी हालत में अपने आप को मजबूत किया, हालांकि वो क्या था, कामिल खुदा था, कामिल इंसान था, यानी कामिल इंसान और कामिल खुदा था। उसने अपनी बदन की हालत में दुआ और रोजे में लेके ये मैसेज दिया कि बीइंग ए ह्यूमन यू विल हाईली बी टेम्पटेड एंड व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू व्हेन यू गेट टेम्पटेड। और यीशु मसीह ने क्या किया, 40 दिन के रोजे के बाद, दुआ के बाद, जब आजमाने वाला आया, इसका मतलब है आजमाने वाला आएगा, कोई ये ना कहे कोई हम में से आजमाया नहीं जाएगा, हम हर तरह से आजमाए जाएंगे, लालच के एतबार से, हसद के एतबार से, बुतप्रस्ती के एतबार से, जादूगरी के एतबार से, और ये विंडोज जो है वो सबकी कहीं ना कहीं खुली होगी। बट कौन विक्टोरियस होगा, कौन सक्सेसफुल होगा, जो जागता होगा, जो दुआ में होगा, जो कलाम में होगा, जो फेलोशिप में होगा, जो रफाकत में होगा, वो मुकाबला करेगा। और यीशु मसीह ने 40 दिन अपने बाप की प्रेजेंस में रह के 40 रोजा का दिन का रोजा रखा, दुआ में रहा, और लिखा है आजमाने वाला आया और उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा तो इन पत्थरों को कह के तेरे लिए रोटी बन जाए। कह सकता था ना भाई, 5,000 को फीड करने वाला, दो रोटी और पांच मछलियां थी, उन्हें वो मल्टीप्लाई कर सकता है, तो पत्थर को हुक्म देके क्यों नहीं पाने वो रोटी में बदल सकता था ना। बट जीसस वॉज डेड टू सिन, ही डज नॉट हैव एनी इंक्लिनेशन टू डू सिन। वो उसने उससे क्या कहा, ना, पहले उसने कलाम का मुकाबला, उसने क्या कहा, सिर्फ इंसान रोटी से नहीं जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, ये कहा ना उसने, उसने उसे कहा कि तू, वो कलाम लेकर आया था, क्या लेकर आया था, कलाम लेकर आया था, और कलाम का मुकाबला खुदा यीशु मसीह ने कलाम से किया। उसने उस वक्त उसे रद्द नहीं किया जब तक वो कलाम से अपने रेफरेंस देता रहा, जब उसने कलाम से हट के बात की फिर उसे कहा गया मिलाउन दूर हो। ये क्योंकि कलाम का रेफरेंस दे रहा था, क्या कह रहा था कि तू इन पत्थरों को क्या कहते हैं, ली रोटी बन जा। तो यीशु मसीह क्योंकि जानता है कि अगर मैं इसकी सुनूंगा और इसी के मुताबिक करूंगा तो मैं जाऊंगा, उसने कहा कि तेरी बाबत लिखा तू यहां से छलांग लगा, फरिश्ते आएंगे और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। यीशु मसीह ने कहा अपने खुदावंद खुदा की आजमाइश ना कर। फिर उसने कहा कि सारी दुनिया तेन मैं दे दियांगा तो मेरे अगे की कर। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, ऐशतान दूर हो। यानी एक वक्त ऐसा आता है कि मुझे और आपको उसे डांटना चाहिए, तब वो जाता है। आपको 3 दिन पहले का वाक्य बताता हूं कि 3 दिन पहले मैं तकरीबन ये 3-4 बजे का टाइम था, मैं सो रहा था और लिटरली मैंने ना बड़ी देर के बाद एक्सपीरियंस किया कि स्पिरिट्स जो थे ना, डिमोनिक स्पिरिट्स जो हैं, दे केम इनटू माय रूम, दे बिगन टू अटैक मी। और जैसे होता आप फाइट करते हो, बकायदा फाइट करते हो, और मैं उसी हालत में फाइट करता जा रहा हूं, मैं उठ नहीं रहा, मैं आई केप्ट ऑन फाइटिंग विद द स्पिरिट्स। और मुझे यूं लग रहा था जैसे ना इन्होंने मुझे दबोचना है। आई केप्ट ऑन फाइटिंग, केप्ट ऑन फाइटिंग। थोड़ी देर के बाद वक्फा पढ़ना, फिर स्पिरिट्स ने आना, फिर हमला करना। फिर मैंने सोचा कि ये देना गना गो नाउ, इस तरह से अब नहीं जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने ना आंखें बंद में सोचा कि व्हाई डोंट आई चेंज माय रूम। आई वाज ह्यूमनली थिंकिंग कि व्हाई डोंट आई चेंज माय रूम, रूम में कोई मसला हो सकता है। फिर मैं उसी दौरान अटैक्स हो रहे हैं, दोबारा स्पिरिट्स ऐसे आ रही हैं। फिर मैंने कहा नहीं, चेंजिंग द रूम डज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। फिर तो मैं भाग रहा हूं इनसे, बाइबल में क्या है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे। अच्छा, मैंने उसी वक्त फिर क्या किया, मैंने कहा कि टाइम असल में ये है कि मुझे उठना चाहिए, खुदा चाह रहा है कि इन्हां नूं किसे होर तरह डील करो। सो आई स्टूड अप, आई बिगन टू प्रे, और मैंने खुदा से कहा खुदावन तेरे नाम से इन बदरूहों को डांटता हूं, अब ये कमरे में ना आए। द मोमेंट आई सेड, आई रियलाइज के जैसे कोई एकदम फिजा क्लियर हो गई है, बिल्कुल फिजा क्लियर हो गई। और फिर मैं लेट गया, मुझे मुकम्मल पता था कि अब ये नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मैं लेटा, उसके बाद नथिंग हैपेंड। और ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है, ये मुझे ये असल में बता रहा था कि बाज़ुकात हमें उनसे फाइट करनी है फिजिकली अपने जोर से, अपने ईमान से, मगर बाज़ुकात हमें दुआ से फाइट करनी है। खुदावंद से मांग के कहना, खुदावंद इन्हें भगा, आई डोंट वांट टू फाइट एनीमोर, तू इनके साथ क्या कर, इन्हें फेस कर, मुकाबला कर। तो वो भाग गई। इसी तरह अगर आपकी लाइफ में स्पिरिट्स आपसे गुनाह करवाती हैं, गुनाह करो कौन करवाता है, स्पिरिट्स करवाती हैं, मगर गुनाह होता कहां पे है, यहां पे और यहां पे, यहां और यहां पे, यहां से गुनाह होता है और यहां से वो हमला हो रहा होता है, ख्वाहिश हमला होती है और फिर गुनाह को क्या करती है, जन्म देती है। याकूब क्या कहता है, ख्वाहिश हमला होके क्या करती है, गुनाह को जन्म देती है। यहां से पहले शुरू होता है, यहां से आप उसका सोचते हैं और फिर वो प्रेग्नेंट होता है, इम्प्रेग्नेशन के अमल से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मैनिफेस्टेशन की तरफ जाता है, डिलीवरी की तरफ जाता है और फिर हमें मालूम पड़ता है, ओ इट्स डन नाउ। तो मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, उससे मुकाबला करना पड़ेगा। और मुकाबला कैसे होगा, दुआ और रोजे से, दुआ और रोजे से। रोजा जो है बेसिकली, या दुआ जो है बेसिकली, जहां आपको कवर कर रही होती है ना, उसके साथ साथ आपको स्ट्रेंथन भी कर रही होती है, आपको स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन करती है, फिजिकली वीक करती है। जब आप जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर है ना, आई मीन टू से कि जिस्मानी कामों के लिहाज से आप बहुत ताकतवर हैं, तो समझ लीजिए फिर आप स्पिरिचुअली वीक होंगे। जहां आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो गए हैं, फिजिकली गुनाह के एतबार से आप वीक होते जाएंगे। यानी ये जो है ना, ऐसा अमल है कि एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी, एक इधर वाली बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। अगर आप रास्तबाजी में, यानी पाकीजगी में और ताबेदारी में और स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होंगे, तो फिजिकली आप आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाएंगे। यू विल बिगन टू डाई, बिगन टू डाई। और ये डाइंग जो है, ये एजिंग है गुनाह की। जिस तरह आप फिजिकली एजिंग के अमल में से गुजरते हैं, हर रोज आहिस्ता 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 मरते जाते हैं और फिर झुरियां पड़ती हैं, जिंदे ते असी बहुत मेकअप करने, आहिस्ता 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 फिर झुरियां नहीं जांदियां, फिर आहिस्ता 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 स्किन ढलना शुरू करती है, हड्डियां गोश्त देना शुरू छोड़ना शुरू कर देती हैं और बंदा आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से गुनाह की हालत भी और नेचर का भी यही मामला है कि जब आप फिजिकली समझ रहे हैं ना बड़े स्ट्रांग है, तो स्पिरिचुअली आप वीक है। जब स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, दुआ से, रोजे से, कलाम से, फेलोशिप से, पाक शराकत से, तो फिर आप जिस्मानी तौर पर एजिंग का शिकार होते हैं गुनाह के एतबार से। और जब गुनाह के एतबार से एजिंग यानी बुढ़ापे का शिकार होंगे ना, तो बुढ़ापे दे शिकार होने के नाल ही ख्वाहिश मरना शुरू हो जाती, डिजायर्स जो है ना, जिस्मानी डिजायर्स वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो जो जिस्म यानी गुनाह के एतबार से मर गया, उसे गुनाह जितना मर्जी पुकार पुकार कर आवाजें दे, वो जवाब नहीं देता। अब उसे एक ही आवाज आ रही होगी और वो यीशु मसीह की आ रही होगी, और वो जो ये कहता कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। और अगर आप गुनाह के एतबार से जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपको उसकी आवाज नहीं आएगी। अगर आप स्पिरिचुअल जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपके कान इतने तेज होंगे, हजार आवाजों में भी आपको उसकी आवाज पहचान जाएगी। जिससे आप प्यार करते हैं ना, वो भावें पर्दियां के पिछों भी आवाज दे तो आ जाती, ओ या आई नो हु इज देयर, है ना। इतनी तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं ना, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आपको इश्क है बेसिकली, उसकी आवाज आप क्या, उसकी उसके तो जिस्म की स्मेल भी आपको आना शुरू हो जाती है। आप कहते हैं कि वो गुजरा है, उसका साया गुजरा है आपके ख्वाब में, आपकी रोया में। और जेड़ा बंदा त्याडे ख्याल सब तो ज्यादा आंदा है ना, उसी से आपको प्यार है। तो जे यसु मसीह ज्यादा आंदा है तो यसु मसीह नाल प्यार है, आमीन। तो यीशु मसीह से प्यार होना चाहिए, और जब उससे प्यार होगा तो हम गुनाह के एतबार से मरना शुरू कर देंगे। क्योंकि उससे क्या, उसने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरियां डालियां, और कोई डाली जो है अगर मुझ में फल नहीं लाती तो वो काटी और आग में डाली जाती, काटी जाएगी। आप कौन सी डाली हैं, काटी हुई हैं या लगी हुई हैं? अगर आप लगी हुई हैं तो आपको फल लाना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर समझिए, अगर कटे हुए हैं तो मामला आग के साथ है, आग का और आपका। और अगर आप मसीह के साथ लगे हुए भी हैं और फिर भी गुनाह कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वक्त करीब है, काटे जाएंगे और आग में फेंके जाएंगे। और कोई मसीही अपने आप को धोखे में ना रहे रखे कि मैं शायद जजमेंट में से नहीं गुजरूंगा, मेरी और आपकी जजमेंट होनी है, आमीन। इसलिए मैं और आप हर रोज गुनाह का मुकाबला करें, और मुकाबला करने वाले की कुमक आसमान से आती रहती है, और जरा बिल्कुल सरेंडर कर देता है उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, उसके लिए कहीं से कोई मदद नहीं आएगी, उसे कोई कोई हेल्प आउट नहीं करता। और जो पुकारता है, जो तैयार है, जिसे मदद चाहिए, खुदा उसे मदद देता है, और जिसे गुनाह गुनाह ही नहीं लगेगा उसकी कोई मदद नहीं है, अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मत होगा, बदबख्त होगा जिसके मुकाबले में कोई मैदान में उतरता नहीं है। और अगर आप स्पिरिचुअली जिंदा हैं तो फिर गुनाह के अतबार से मर गए हैं, और अगर आप गुनाह के अतबार से जिंदा हैं तो स्पिरिचुअली आप डेड हैं। आपने फैसला करना है कि आप किस हालत में हैं, और आपकी हालत आपके इख्तिताम का फैसला करती है, इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी। अगर तो आपको वाकई यकीन है कि यीशु मसीह आ रहा है तो फिर आप तैयारी करेंगे, तैयारी करेंगे ना। और अगर आपको यकीन ही नहीं है कि वो आने वाला है तो फिर तैयारी भी, तैयारी किसकी करनी है, लिपस्टिक लगा के, काजल लगा के, मेकअप करके? आई एम नॉट अगेंस्ट इट, सुनिए, सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूं कि ये ही तैयारी जो है नहीं करनी हमें, हमें स्पिरिचुअली भी प्रेपरेशन करनी चाहिए, हमें स्पिरिचुअली भी अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। जिस तरह हम बॉडीली अपने आप को तैयार कर रहे हैं, स्पिरिचुअली भी अपने आप को तैयार करें, आमीन। आइए बोले हालेलुया। तो कितने लोग गुनाह के अतबार से मरे हुए हैं? सो हार्ड टू रेज योर हैंड्स, राइट? मुश्किल है ना, हम मर रहे हैं गुनाह के अतबार से, आमीन। हम गुनाह के अतबार से मर रहे हैं, और मरने वाला जो है वो जिंदा किया जाएगा जब यीशु मसीह आएंगे, और जेड़ा मरिया नहीं है उस जिंदा किंदे लिए किया जाएगा हमेशा दी मौत दे ली। आइए अपने सरों को झुकाएं। मरे मगर गुनाह के अतबार से, मरना चाहिए गुनाह के अतबार से। अगर मैं और आप नेकी के अतबार से मर गए हैं तो याद रखिए मुझे और आपको एक दिन हिसाब देना पड़ेगा, और वह हिसाब इंतहाई खतरनाक होगा। उस रोज खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको अपने बाप के सामने पेश करके कुछ सिफारिश नहीं मेरी करेगा, कोई एडवोकेसी नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे खून ने इसे बचाया हुआ है, बल्कि वो कहेगा कि मैं तुझे जानता भी नहीं हूं। अगर आप जेन्युइनली सेव्ड हैं तो फिर आपको ये जानना चाहिए कि आपको खुदावंद के कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। बड़ा मुश्किल है, मगर खुदावंद यही चाह रहा है मुझसे और आपसे, मेरे और लिए, आपके लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद दुआ की है, और दुआ उसके लिए की जाती है जो कमजोर होते हैं, जो वीक हैं, और उसने दुआ की है मुझे और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आइए अपनी सारी नाराजगियों का इकरार करें, छोटे छोटे गुनाहों का इकरार करें, और हर रोज इकरार किया कीजिए, अगर मगर के साथ नहीं बल्कि पूरी सिदक दिली के साथ, खुदावंद मैंने ये कर दिया।